एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जिसमें हम रोज रात जाते तो हैं पर शायद उसे ठीक से समझते नहीं, मतलब हमारे सपनों की दुनिया।
हाँ बिल्कुल। और इस अजीब सी रहस्यमयी लगने वाली दुनिया को समझने के लिए आज हमारे पास है जे एलन हॉब्सन की एक बहुत ही अहम किताब ड्रीमिंग। ये किताब सपनों को देखने का एक बिल्कुल कह सकते हैं वैज्ञानिक नजरिया देती है।
सही कहा। और आजकल जब हम अपने दिमाग, अपनी चेतना, मेंटल हेल्थ इन सब चीजों को लेकर इतने जागरूक हो रहे हैं तब ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि भाई विज्ञान क्या कहता है सपनों के बारे में। ये उन पुरानी धारणाओं को सीधी चुनौती देती है कि सपने कोई भविष्यवाणी है या दबी हुई इच्छाएं।
बिल्कुल, ये हमें अपने ही अंदर क्या चल रहा है उसे एक नई रोशनी में देखने में मदद करती है। तो सबसे पहले ये जे एलन हॉब्सन हैं कौन, मतलब जिन्होंने सपनों पर हमारी सोच को इतना बदल दिया?
हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, हॉब्सन अमेरिका के एक बहुत माने हुए मनोचिकित्सक थे, पर वो सिर्फ उतने ही नहीं थे, वो एक न्यूरो साइंटिस्ट भी थे, मतलब तंत्रिका विज्ञानी। और उन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग 50 साल, आप सोचिए 50 साल, नींद और सपनों पर रिसर्च करने में लगाए।
50 साल? और उनकी खास बात क्या थी, मतलब दूसरे मनोवैज्ञानिकों से अलग?
हाँ, खास बात ये थी कि वो सिर्फ मरीजों से बात करके सपनों का मतलब नहीं निकालते थे। वो बकायदा लैब में जाते थे, ईईजी मशीनों से दिमाग की तरंगे मापते थे, ब्रेन स्कैन देखते थे। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर थे वो।
अच्छा, तो मतलब वो साइकोलॉजी और बायोलॉजी दोनों को साथ लेकर चल रहे थे।
बिल्कुल, यही उनका सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने मन और मस्तिष्क के बीच का जो गैप था ना, उसे पाटने की कोशिश की। वो मानते थे कि हम जो सपने में महसूस करते हैं, डर, खुशी, उड़ना, वो सब दिमाग में हो रहे केमिकल और इलेक्ट्रिकल बदलावों का नतीजा है, कोई हवा हवाई बात नहीं है।
और रॉबर्ट मैकाले के साथ उनका काम भी काफी मशहूर है ना, आरईएम नींद पर?
हाँ बिल्कुल, उसी ने सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी।
अच्छा, तो अब आते हैं किताब ड्रीमिंग पर। इसका मुख्य मकसद क्या बताया हॉब्सन ने?
देखिए, आसान शब्दों में कहें तो हॉब्सन सपनों पर जो सदियों से रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ था ना, उसे हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम सपनों को कोई पहेली या जादू टोना ना समझें, बल्कि दिमाग की एक नेचुरल और समझने लायक प्रक्रिया की तरह देखें।
मतलब विज्ञान की नजर से देखें।
हाँ बिल्कुल। और इसी सोच का जो निचोड़ है वो उनकी मशहूर थ्योरी है, एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस। नाम थोड़ा टेक्निकल है पर आइडिया काफी सीधा है।
क्या है वो आइडिया?
वो ये कि सपने हमारे अचेतन मन के कोई गहरे छिपे हुए संदेश नहीं है, जैसा कि सिगमंड फ्रॉयड मानते थे।
हाँ बिल्कुल,
फ्रॉयड का तो यही कहना था ना कि सपनों में हमारी दबी हुई इच्छाएं बाहर आती हैं।
हाँ बिल्कुल।
तो हॉब्सन क्या कहते हैं?
हॉब्सन कहते हैं कि सपने तब बनते हैं जब हम आरईएम नींद में होते हैं।
वो नींद का वो हिस्सा जब आंखें तेजी से हिलती हैं, उस वक्त हमारे ब्रेन स्टेम से, मतलब दिमाग के निचले हिस्से से, कुछ रैंडम बेतरतीब न्यूरल सिग्नल निकलते हैं।
रैंडम सिग्नल मतलब उनका कोई खास मतलब नहीं होता?
हाँ, शुरू में नहीं, और फिर हमारा कॉर्टेक्स, जो दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा है, वो इन बेतरतीब सिग्नलों को पकड़ता है और उनसे कोई मतलब निकालने की कोशिश करता है, एक कहानी बनाने की कोशिश करता है।
तो जैसे कोई हमें कुछ भी उल्टे सीधे शब्द दे दें और हम उनसे कोई कहानी बना लें।
वैसा कुछ। बिल्कुल सही, क्या बढ़िया एनालॉजी दी है। दिमाग बस अपने अंदर के शोर को समझने की कोशिश कर रहा है और वही कोशिश सपने के रूप में सामने आती है। तो ये किताब हमें सपनों के इतिहास से लेकर रैम नींद, ब्रेन केमिस्ट्री और फिर इस एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी तक ले जाती है। ये पूरा नजरिया ही बदल देती है।
चलिए थोड़ा और खोलते हैं इसे। किताब के अंदर क्या क्या है, शुरुआत कैसे होती है?
शुरुआत होती है सपनों की व्याख्या के इतिहास से, मतलब कैसे पुरानी सभ्यताओं में लोग इसे भगवान का संदेश मानते थे।
हाँ, और फिर फ्रॉयड आए जिन्होंने कहा ये दबी हुई इच्छाएं हैं।
हॉब्सन दिखाते हैं कि कैसे हजारों साल से अटकलें ही ज्यादा थीं, ठोस सबूत कम थे।
बिल्कुल, और यहीं से वैज्ञानिक तरीके की जरूरत समझ आती है। फिर किताब में आता है रेम नींद की खोज वाला हिस्सा। ये 1950 की बात है, यूजीन एसरिंस्की और नथानियल क्लेटमैन।
हाँ, ये तो बहुत बड़ा मोड़ था। इससे पहले तो लोग सोचते थे नींद मतलब दिमाग बंद। सही कहा, लेकिन इस खोज ने बताया कि नहीं भाई, ये दिमाग तो नींद में भी बहुत एक्टिव रहता है, खासकर आरएएम स्टेज में, और यहीं सबसे ज्यादा विविड कहानी जैसे सपने आते हैं। इसने सपनों की साइंटिफिक स्टडी का दरवाजा खोल दिया।
अच्छा, तो आरएम नींद में सपने आते हैं, पर दिमाग में उस वक्त होता क्या है? केमिकल्स का क्या रोल है?
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हॉब्सन न्यूरोकेमिस्ट्री में जाते हैं, वो बताते हैं कि आरएम नींद में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो दिमाग के केमिकल मैसेंजर होते हैं, उनका लेवल बदल जाता है।
जैसे
जैसे एसिटिलकोलाइन, जो सीखने और याददाश्त से जुड़ा है, वो बढ़ जाता है, लेकिन सेरेटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन, जो हमें लॉजिकल रखते हैं, दुनिया से जुड़े रखते हैं, उनका लेवल बहुत बहुत कम हो जाता है।
ओ, तो इसका मतलब दिमाग एक्टिव तो है पर तर्क वाला हिस्सा सो रहा है। शायद इसीलिए सपने इतने अजीब होते हैं, भावनाओं से भरे लेकिन लॉजिक गायब।
भावनाओं वाले हिस्से जैसे एमिग्डला, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, देखने सुनने वाले हिस्से भी। लेकिन वो हिस्सा जो प्लानिंग करता है, रियलिटी चेक करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो शांत रहता है। इसीलिए हम सपने में उड़ रहे होते हैं और हमें अजीब नहीं लगता।
वाह, तो इसी सब जानकारी के आधार पर हॉब्सन और मैककार्ली ने अपनी वो थियोरी बनाई, एक्टिवेशन सिंथेसिस।
हाँ जी, ब्रेन स्टेम से रैंडम सिग्नल उठे, एक्टिवेशन, और कॉर्टेक्स ने उनसे कहानी बना ली, सिंथेसिस। हॉब्सन बताते हैं कि ब्रेन स्टेम का एक हिस्सा है पोन्स, वो ये सिग्नल भेजता है, और हमारा कॉर्टेक्स, जिसकी आदत है मतलब ढूंढने की, वो इन अधूरे सिग्नलों को जोड़कर एक अनुभव बना देता है। वही सपना है।
तो मतलब ये हमारे अपने ही दिमाग की उपज है, कोई बाहरी संदेश नहीं।
हॉब्सन का तो यही मानना है। हाँ, वो ये भी कहते हैं कि सपने में जो चीजें आती हैं, वो अक्सर हमारे दिन की चिंताओं, यादों, भावनाओं से जुड़ी होती हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स कहानी बनाने के लिए वही मटेरियल इस्तेमाल करता है जो उसके पास है।
अच्छा, और क्या सपनों का कोई फंक्शन भी है, कोई उद्देश्य, जैसे मेमोरी बनाना वगैरह?
इस पे भी बात होती है किताब में। कुछ रिसर्च इशारा करती हैं कि रैम नींद शायद यादों को पक्का करने में, मतलब मेमोरी कंसोलिडेशन में, और इमोशनल अनुभवों को प्रोसेस करने में मदद करती है। सपने शायद इसी प्रक्रिया का एक साइड इफेक्ट हो या हिस्सा हो।
जैसे दिमाग रात में दिन भर की फाइलों को ऑर्गेनाइज कर रहा हो।
हाँ, कुछ वैसा। लेकिन हॉब्सन इसे लेकर बहुत दावे से नहीं कहते कि यही सपनों का मुख्य काम है, वो इसे एक संभावना मानते हैं।
और क्रिएटिविटी, बहुत लोग कहते हैं सपने में आइडिया आया।
हॉब्सन मानते हैं कि हाँ, सपनों की वो लॉजिक फ्री अवस्था नए कनेक्शन बनाने में मदद कर सकती है। दिमाग जब बंधा हुआ नहीं होता, तो अजीबोगरीब चीजें जोड़ सकता है, जिससे नए विचार आ सकते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी कविता या आविष्कार सपने में मिल गया।
नहीं, हॉब्सन इस पर शक करते हैं। वो इसे प्रेरणा का एक स्रोत मानते हैं, कोई रेडीमेड समाधान नहीं।
किताब में नींद की बीमारियों पर भी बात है।
हाँ, नार्कोलेप्सी, रैम बिहेवियर डिसऑर्डर जैसी चीजों पर, और ये समझाया गया है कि सामान्य स्वप्नों की बायोलॉजी को समझना इन बीमारियों के इलाज में कैसे मददगार हो सकता है।
और आखिर में मनोविज्ञान पर इसका क्या असर है?
हॉब्सन पारंपरिक स्वप्न व्याख्या को चुनौती देते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि स्वप्न बेकार हैं। वो कहते हैं कि सपने हमारी मौजूदा भावनाओं और चिंताओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं, भले ही वो छिपे हुए कोड ना हों। उनका इमोशनल टोन, मतलब सपने में महसूस होने वाली भावना, वो जरूरी है।
वाह, ये तो सच में सपनों को बिल्कुल अलग तरह से देखने का तरीका है। अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालें तो क्या होंगी? मेरे लिए तो सबसे पहली बात यही है कि विज्ञान की ताकत, मतलब ईजी, ब्रेन स्कैन जैसी चीजें सपनों जैसी जटिल चीज को भी समझने में मदद कर सकती हैं, सिर्फ अंदाजों से आगे बढ़कर। हाँ, और दूसरी बात जो मुझे बहुत अहम लगी वो ये कि हमारा दिमाग एक मतलब खोजने वाली मशीन है, उसे खालीपन पसंद नहीं। जैसे ही उसे कुछ सिग्नल मिलते हैं, चाहे वो कितने ही बेतरतीब क्यों ना हो, वो उनसे कहानी बना लेता है। सपने इसका बेहतरीन उदाहरण है, और ये हम जागते हुए भी करते हैं, है ना?
बिल्कुल, हर वक्त करते हैं। और तीसरा पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, विज्ञान रहस्य को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे और गहराता है। ये जानना कि हमारे दिमाग के अंदर हर रात ये पूरा न्यूरोकेमिकल ड्रामा चल रहा है, जिससे एक दुनिया बन जाती है, ये तो और भी ज्यादा कमाल की बात है।
सही कहा, इससे दिमाग के प्रति सम्मान बढ़ता है। चौथा पॉइंट, मन और मस्तिष्क अलग नहीं है। हमारे एहसास, हमारे सपने, सब हमारे दिमाग की बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। ये माइंड बॉडी कनेक्शन को पुख्ता करता है।
और पांचवा, जो शायद सबसे क्रांतिकारी है, सपनों का अर्थ छिपा हुआ नहीं, सामने है। हॉब्सन कहते हैं, जटिल सिंबल ढूंढने की जरूरत नहीं, सपने में जो भावनाएं हैं वही मायने रखती हैं। अगर डर है तो शायद चिंता है, खुशी है तो शायद कुछ अच्छा चल रहा है। कितना सीधा और पारदर्शी तरीका है।
किताब में कुछ पंक्तियां या विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे हॉब्सन का ये कहना कि सपने छिपी हुई इच्छाएं नहीं बल्कि नींद के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि के पारदर्शी खुलासे हैं।
क्या बात है, बिल्कुल सीधा हमला फ्रॉइड पर। ये कहता है कि सपनों को डिकोड करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं बल्कि नींद के विज्ञान को समझने की जरूरत है। ये सपनों की समझ को ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाता है ना?
हाँ बिल्कुल। एक और गहरा विचार, मस्तिष्क अर्थ की खोज के लिए इतना मजबूर है कि वह तब भी अर्थ गढ़ लेता है जब उसे मिलने वाले डेटा में बहुत कम या कोई अर्थ नहीं होता।
ये तो सिर्फ सपनों की बात नहीं, हम असल जिंदगी में भी यही करते हैं। अधूरी जानकारी से नतीजे निकाल लेना, संयोगों में पैटर्न देख लेना, दिमाग को कहानी चाहिए बस।
और रचनात्मकता पर ये नजरिया, आरईएम नींद चेतना की सबसे रचनात्मक अवस्था हो सकती है, इसलिए नहीं कि ये छिपे हुए सत्य उजागर करती है बल्कि इसलिए कि ये मन को तर्क और वास्तविकता परीक्षण की बाधाओं से मुक्त करती है।
मतलब क्रिएटिविटी कोई रहस्यमयी चीज नहीं बल्कि दिमाग की एक खास वर्किंग स्टाइल है। जब लॉजिक का बंधन ढीला होता है तो दिमाग नए कनेक्शन बना पाता है।
बिल्कुल। और अंत में ये वाक्य जो शायद सब कुछ समेट लेता है, विज्ञान सपने देखने के जादू को नष्ट नहीं करता, ये मस्तिष्क के जादू को उजागर करता है। ये डरने के बजाय उत्सुक होने और अपने दिमाग की क्षमताओं को सराहने की बात करता है।
अच्छा, तो ये सब ज्ञान ले लिया हमने, अब सवाल ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या करें? कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका?
हाँ हाँ बिल्कुल है। सबसे पहली बात तो अच्छी नींद की कीमत समझना। अगर रेम नींद इतनी जरूरी है तो हमें पूरी और नियमित नींद को प्राथमिकता देनी चाहिए, कम से कम 7-8 घंटे, खासकर जब कुछ सीख रहे हों या इमोशनली थके हुए हों।
सही बात है। और दूसरा?
दूसरा, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होना। अगर सपने हमारी भावनाओं का आईना है तो सुबह उठकर याद करने की कोशिश कर सकते हैं कि सपने में कैसा महसूस हो रहा था, डरा हुआ, खुश, गुस्सा। इससे हमें अपनी अंदरूनी भावनात्मक स्थिति का अंदाजा लग सकता है बिना किसी जटिल विश्लेषण के।
मतलब ड्रीम जर्नल रखें तो सिंबल नहीं, इमोशन नोट करें।
हाँ बिल्कुल। जैसे अगर बार बार कोई पीछा करने का सपना आ रहा है तो ये सोचने के बजाय कि इसका क्या गुप्त मतलब है, ये सोचें कि क्या असल जिंदगी में किसी दबाव या चिंता से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन है।
और बुरे सपनों का डर?
देखिए, ये जानकर के बुरे सपने अक्सर तनाव या चिंता की वजह से दिमाग के डर वाले सेंटर की ज्यादा एक्टिविटी का नतीजा होते हैं। शायद हम उनसे थोड़ा कम डरें। वो कोई अपशकुन नहीं बल्कि दिमाग का स्ट्रेस प्रोसेस करने का एक तरीका हो सकते हैं। इस समझ से उनका असर थोड़ा कम हो सकता है। चौथा, क्रिएटिविटी के लिए इस्तेमाल। अगर सुबह सपने की कोई अजीब इमेज या कनेक्शन याद रह जाए तो उसे लिख लें। क्या पता कब कोई नया आइडिया उससे निकल आए। ये दिमाग का फ्री ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है।
हाँ, ये तो बढ़िया टिप है। और कुछ?
और शायद सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग की तारीफ करना। ये सोचना कि हमारे अंदर ये अद्भुत मशीन है जो हर रात शून्य से एक पूरी दुनिया बना सकती है, ये अपने आप में गजब का एहसास है। ये हमें अपनी बायोलॉजी की शक्ति की सराहना करना सिखाता है। मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा सबक निकला वो ये है कि विज्ञान सपनों को कमतर नहीं आंकता बल्कि उनकी असली भव्यता दिखाता है। ये समझना कि ये सब हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स और केमिकल्स का खेल है, ये मुझे फ्रॉइड की जटिल व्याख्याओं से ज्यादा ज्यादा आजाद महसूस कराता है।
हाँ, और मेरे लिए ये विचार सबसे शक्तिशाली है कि सपने हमारी भावनाओं का एक पारदर्शी प्रतिबिंब है। मतलब खुद को समझने के लिए हमें किसी मुश्किल कोड को क्रैक करने की जरूरत नहीं, बस अपनी भावनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे सपने अगर हम गौर करें तो हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। ये दिखाता है कि विज्ञान हमारे सबसे निजी, सबसे अंदरूनी अनुभवों तक पहुंचकर उन्हें समझने में हमारी मदद कर सकता है। वाकई ये दिमाग का जादू है जिसे विज्ञान उजागर कर रहा है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।